Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavan Shankaracharya dwara virchit Yati Panchakam. Arambh ke do shlok.
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः वेदान्तवाक्येषु सदारमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणीतवन्तः कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त अशोकवन्त करुणीतवन्त कौपीनवन्त खलु मूलमन्तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वये गोकुमात्रयन्तः मूलमन्तरो केवलमाश्रयन्तः पाणि कन्थामपि स्त्री कोत्सयन्तः कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त कन्थामपि स्त्री कोत्सयन्त कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त वेदान्तवाक्ये.
वेदान्तवाक्येषु सदारमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः. कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस एक श्लोक में सारी बातें कह दी. हमारा चिंतन कैसा हो, हमारी साधना क्या हो और हमारा स्वभाव कैसा हो, जीवन कैसा हो, विलक्षण बात है. इस एक श्लोक में सब है. चिंतन भी, साधना भी, जीवन भी, स्वभाव भी, रहन सहन भी, व्यवहार भी. एक श्लोक साधक के पूरे जीवन को दिखा रहा है. कितनी विचित्र बात है, अद्भुत बात है. एक श्लोक में साधक का संपूर्ण जीवन समाया है, कुछ नहीं छोड़ा, सब आ गया. आगे के श्लोकों में इसी बात की व्याख्या है, इसी का विस्तार है, कोई नई बात नहीं. जो इसमें कहा वो सब कुछ है. चिंतन, वेदांत वाक्येषु। वेदांत का अर्थ सिर्फ ज्ञान अथवा मैं ब्रह्म हूं इस विचार को ही मत समझना। वेदांत का अर्थ अध्यात्म से समझना। हम लोग गलत बात जल्दी सोचते हैं, गलत चीज को जल्दी पकड़ते हैं कि कहा वेदांत वाक्येषु, तो माला जपने वाले कहेंगे हमारी काम की चीज नहीं है, ये तो ज्ञानियों के मतलब की चीज है। और जहां तक मैं समझता हूं कि संत का कोई भी उपदेश आपको भागने का रास्ता नहीं बताता, आपको आगे बढ़ने की प्रक्रिया बताता है। हम संतों के उपदेश में अपना रास्ता ढूंढते हैं, ये गलत करते हैं। रास्ता अलग मत ढूंढो, रास्ता एक ही है। इस बात को गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। रास्ता एक ही है, रास्ता अलग नहीं ढूंढना है। साधन अलग अलग हो सकते हैं। जरा मुझे बताओ, यहां से अहमदाबाद जाना है तो रास्ता एक है कि अलग अलग है? एक ही है, एक ही है, एक ही रास्ता, एक ही हाईवे। और अगर आप रास्ता अलग बनाने चले तो क्या होगा? बना के देखो, कभी मालूम पड़ेगा। हम रास्ता अलग ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि ज्ञान वेदांत हमारे काम की चीज नहीं, नहीं नहीं, कि हमको दूसरा रास्ता दिखाओ, नहीं नहीं, रास्ता एक है, अध्यात्म पथ। रास्ता एक ही है, हाईवे, अध्यात्म मार्ग। साधन अलग अलग है, साधन अलग अलग है, कि कोई नाश्ता हुआ जा रहा है, कि कोई समाधि में बैठ के जा रहा है, कि कोई सोता हुआ जा रहा है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चलना उसी पर है। वेदांत वाक्येषु सदा रमंतो कहने का एक ही अर्थ है कि आपका तरीका कोई भी हो हमें मंजूर है, आचार्य को मंजूर है, धर्म को मंजूर है, भगवान को मंजूर है। रास्ता एक होना चाहिए। कोई भी महात्मा यह नहीं कहते कि आप नाच करके उसे नहीं पा सकते, कि कोई भी संत ये नहीं कहते कि आप गा के उसे नहीं पा सकते, कि कोई ये नहीं कहता कि आप ध्यान करके उसे नहीं पा सकते। कैसे भी, कैसे भी, और ध्यान रखना कैसे भी, जितने शास्त्रों में साधन वर्णन में मिलते हैं उनके अलावा भी तुमको कोई दूसरा साधन नजर आए तो तुम वो भी करके देखो, पहुंचोगे वहीं। रास्ता एक ही होना चाहिए। मैं आपको कहूं कि गोपियों ने हमारे बनाए हुए किसी रास्ते को नहीं चुना, चुना उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। और वो रास्ता अपना, रास्ता नहीं सॉरी, साधन, तरीका। रास्ता तो एक ही था, परमात्मा से मिलना। मार्ग तो एक ही था, परमात्मा के पास पहुंचना। तरीका ऐसा अपनाया कि जो हम में से किसी ने नहीं अपनाया था। आपने गोपियों से पहले किसको सुना कि घर में रहते हुए और उन्होंने परमात्मा को पाया? किसको सुना कि रोटी बनाते हुए भी उन्होंने भगवान को देखा, कि झाड़ू लगाते हुए भी परमात्मा का जित देखो तित श्याममयी है? गोपियों के अतिरिक्त ये साधन कहां था? संसार में संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए परमात्मा के साथ नाचने का कारनामा अगर किसी ने किया तो गोपियों ने। और आश्चर्य यह नहीं कि गोपियों ने यह किया, आश्चर्य यह है कि हमारा अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा उस गोपियों के साथ नाचने के लिए तैयार हुआ। अगर वो भगवान को नृत्य करना मंजूर था, मंजूर है तो इसका अर्थ है कि उनको साधन से कोई मतलब नहीं कि तुम कैसा साधन करते हो, उनको अर्थ है कि तुम हमारे पास पहुंचो कैसे तुम जानो, कैसे भी। वेदांत वाक्येषु संपूर्ण अध्यात्म का निचोड़, वेदांत वाक्येषु अध्यात्म पथ पर आने वाले किसी भी साधन को चुनो और अपनी ही कही हुई पुरानी बात को दोहराता हूं कि चाहे ट्रेन को चुनो, चाहे क्या कार को चुनो कि बस को चुनो कि लिफ्ट ले लो कि टैक्सी ले लो, कुछ भी मैं तो कहता हूं कुछ नहीं तो पैदल ही चलो, पहुंचोगे। पैदल भी चलोगे तो पहुंचोगे, और मैं तो कहता हूं जरूर पहुंचोगे। पैदल चलने वाले भी पहुंचे, धैर्य रखो, हड़बड़ी मत करो। भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारत को पैदल नाप लिया 3 बार, हम अहमदाबाद क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते। वेदांत वाक्येषु किसी आग्रह की बात नहीं है, दुराग्रह की बात नहीं है कि नहीं जी ओम अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ यही चिंतन होना चाहिए, नहीं नहीं, अगर आपको ये अनुकूल है तो यही होना चाहिए। अगर आपको हवाई जहाज अच्छा लगता है तो वही होना चाहिए, किसी दूसरे से समझौता नहीं। और एक बात बताइए जरा कि जब आप सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय आप दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे जा रहे हैं, या आप अपने अनुसार साधन तय करते हैं? हम अपनी सुविधा से साधन तय करते हैं कि हमारे पास कितना धन है, कि कितनी योग्यता है, कि कितना समय है, उसके अनुसार हम साधन तय करते हैं। हम अपनी सहूलियत देखते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं। ऐसे ही यहां पर भी अध्यात्म के पथ पर भी रास्ता एक है, आइए अपने अपने मन का साधन चुनिए। और मजे की बात यह है कि हो सकता है अहमदाबाद जाने के लिए आपको साधन के ऑप्शन न हो, कि लिमिटेड हो, सीमित हो, लेकिन अध्यात्म के पथ पर तो ऑप्शन भरे पड़े। कोई भी तरीका अपनाइए। प्रहलाद जी ने तो 9 बता दिए पहले ही, नवदा भक्ति, ज्ञान भी है, योग भी है, न जाने क्या क्या है। जितना आपने पढ़ा उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, आप कैसे भी करिए। और आपको पता है भागवत के अनुसार तो रावण और कंस ने भी भगवान की भक्ति ही की थी, तरीका अपना था, वो भी एक तरीका था कि भाई हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, हम इस तरह से चलेंगे, कैसी भी चलो, क्या फर्क पड़ता है। कि आपने देखा होगा कि लोग, खतरनाक लोग, कि ट्रेन की छत पर बैठ करके सफर करते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव है, क्या कर सकते हैं। तो रावण और कंस का स्वभाव ट्रेन पर ऊपर चढ़ करके चलने का स्वभाव था, क्या किया जा सकता। लेकिन पहुंचे वे भी, और वे भी पहुंचते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो, कोई भी साधन अपनाइए, ये चिंतन हो, चिंतन ऐसा हो। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, ये साधना है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहन करो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो। अशोकवंता, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन दुखी मत हो, ये जीवन हो। समझ में आया? चिंतन अध्यात्म के पथ पर, मार्ग पर, किसी भी साधन को करने पर या चुनने पर वो चिंतन करो, चाहे भगवान का स्मरण हो, चाहे आत्मचिंतन हो। चिंतन ऐसा हो, भिक्षान्न मात्रेण, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त प्रत्येक परिस्थिति को सहन करो, ये साधना हो। अशोकवंता, जीवन हो दुखी रहित, जीवन में दुख है ही नहीं, हमारे एक महात्मा को कहते हैं जीवन में दुख है ही नहीं, सिर्फ कल्पना है। लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है कि आप सो रहे हो और सपना देख रहे हो कि कोई आपको पीट रहा है और उस समय कोई कहे कि ये झूठ है, आप नहीं मान सकते जब तक जाग न जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक दुख कल्पना से अधिक और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा न हो तो जीवन में दुख आने पर और कभी इस बात को याद करके देखना कि यह दुख क्या है, सिर्फ कल्पना है, आप हल्के ना हो जाएं तो कहना, सिर्फ सोचने मात्र से। नहीं समझ में आई बात? सच्चाई यह है कि दुख आने पर हम इतने हड़बड़ा जाते हैं कि विचारों को ही खो बैठते हैं। दुख आने पर हम इतने क्या बोलते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। समझ रहे हैं व्याकुल? व्याकुल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, कहना चाहिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं। सही है, टूट जाते हैं, खो जाते हैं, खुद भी खो जाते हैं, विचार भी खो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दुख आने पर, विषाद आने पर, शोक आने पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि सत्संग में आचार्य कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि दुख कल्पना है, और जरा विचार करो, देखने की चेष्टा करो, गौर करो, आपको लगेगा सही है, हम फालतू में दुखी हो रहे थे। यथार्थता समझ में आएगी, दुख बना रहेगा वैसे ही, दुख मिटेगा नहीं, परिस्थितियां बिगड़ेंगी बदलेगी नहीं, परिस्थिति वैसी ही रहेगी, आप हल्के हो जाएंगे। अशोक बनता, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? तो कहा कि क्या जीवन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें शोक न हो? मैंने कहा मुझे माफ करेंगे अगर मैं बोलूं? तो कहा बोलिए। मैंने कहा जीवन अशोक ही है। नहीं समझे? जीवन मूलतः अशोक ही है, उसमें शोक है ही नहीं, हमने दुनिया भर के शोकों को चिपका के रखा है। एक मिनट सोचिए, ठहरिए, विचार कीजिए, कौन सा शोक है आपको अभी? अच्छा आप कहां हैं अभी? यही हो ना, प्रेमपुरी में ही है ना? हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ हमारे साथ सुन रहे हैं ना? तो बोलिए ना। हाँ सुन रहे हैं। एक बात बताइए, यहां बैठे हुए जरा मुझे बताइए, आपको शोक है? बाहर निकलिए जरा, फिर ये भी टेंशन हुई, क्या होगा, हे भगवान, अरे यार पता नहीं वो सर्वेंट आया होगा कि नहीं आया होगा, कि उसने बनाया होगा, है कुछ नहीं, हम निकलते ही बाहर चिपकाना शुरू करते हैं। और सच कह रहा हूं, कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पनाएं हमने जोड़ रखी हैं, हमने चिपका रखा है सबको, हमने चिपका रखा है। आप सोते हैं तो कोई शोक नहीं होता, आप सत्संग में होते हैं तो कोई शोक नहीं होता, और जब आप चाहते हैं तब आपको कोई शोक नहीं होता। ध्यान देना, आप मेरी बात को समझना, बड़ी उल्टी बात है कि लोग कहते हैं हम दुखी नहीं होना चाहते, मैं कहता हूं तुम दुखों से छूटना नहीं चाहते, तुम्हें दुखों से चिपकने का शौक है। कि जब आप टीवी देखना चाहते हो और खुश होना चाहते हो और कोई कहे भी कोई बुरी बात, बोले अभी नहीं रुक जाएगा, पहले हमको देख लेने दो, तब आप उनसे बचना चाहते हो। और जब आप शोक से बचना चाहते हो तो आप मस्त हैं, कोई सुनाए भी कोई बात, कोई परेशानी की बात नहीं सोचते, बाद में पहले क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि अभी आप तैयार नहीं है उस शोक से चिपकने के लिए। और जब आप रोते हैं तो इसका अर्थ है कि अब आप तैयार हैं। कि जब आप टेंशन में आते हैं तो इसका मतलब है आप तैयार हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अशोक आपका स्वभाव है, स्वाभाविक, आप सदा खुश हैं।
मस्त है। और मैं हमेशा कहता हूं आप हंसते हुए जीवन भर रह सकते हैं लेकिन दुखी एक घंटे भी नहीं रह सकते, रोते हुए एक घंटे, जरा कभी देखना एक घंटे हुए रो करके देखना। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कभी दुख आए तो या तो वेदांत की बातें याद करो, प्रेमपुरी आश्रम के उपदेश याद करो, चिदंबरानंद को याद करो, और अगर ये याद नहीं आए तो दूसरी बात याद करो कि अभी बड़ा दुख हो रहा है, चलो रोते हैं, और जरा दिल खोल के कभी रोइए बैठ के। और आप मानो न मानो लेकिन मैं मानता हूं कि आप रोने बैठेंगे चाह करके, चलो रो लेते हैं, तो पांच ही मिनट में आपका रोना खत्म हो जाएगा, फिर आंसू ढूंढे नहीं मिलेंगे कि कहां है। और आपको बताऊं कि कोई सामने आए तो आप ज्यादा रोते हो, और अकेले हो तो कमाल है। क्या हम रोते हुए दिखना चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हमारी तो समझ ही में नहीं आता है कि हमने इस दुख को चिपकाया हुआ क्यों है, क्यों चिपकाया? अशोक बनता जीवन हो, करुणाइक बनता स्वभाव हो, थोड़ा फर्क है। अशोक बनता है जीवन हो, दुखी रहित जीवन, शोक रहित जीवन, ये क्या है? जीवन है। करुणाइक बनता स्वभाव हो, दूसरों के ऊपर दया करिए, क्या बात है। और कॉपी न बनता है, ये क्या है? बोले ये आचरण, ये रहन सहन व्यवहार। कौपीनबंधता का अर्थ है लज्जा निवारण के लिए वस्त्र धारण करना। कौपीनबंधता का मतलब लंगोटी पहनने से नहीं है, कौपीनबंधता का मतलब है व्यवहार से। कि आप अगर आप देखो, एक बात बताइए कि जो महात्मा हो गया, फक्कड़ हो गया, ज्ञानी हो गया, बुद्ध हो गया, कि सिद्ध हो गया, उसको कौपीन की भी क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे? उसको लंगोटी की भी क्या जरूरत है? दिगंबर ही क्यों ना हो जाए, कि नग्न ही क्यों न घूमे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर वो कौपीन धारण किए हैं तो इसका अर्थ है वो व्यवहार की मर्यादा का पालन कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? व्यवहारिक मर्यादा। मैंने सुना है कि भगवान शुकदेव दिगंबर रहते थे, लेकिन जनकपुरी में गए तो कौपीन पहन के गए,